ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। तो रूप गोस्वामी, हम पिछले महीने में देख रहे थे कि भक्ति के लक्षणों के बारे में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, सामान्य भक्ति और अपने दूसरे लहर जो भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व भाग में चार लहरें हैं, एक सामान्य भक्ति, दूसरा साधना भक्ति, तीसरा भाव भक्ति और चौथा प्रेम भक्ति। और रूप गोस्वामी के इस पूरे भाग के समुद्र में श्रील प्रभुपाद जी ने साधना भक्ति के लहर को 16 अध्याय में विभाजित किया गया है। और उसका प्रथम अध्याय है भक्ति के पहला स्तर, साधना भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि साधना भक्ति में दो गुण होते हैं। दो गुण कौन से? एक शुभधा और क्लेशाग्नि। और भाव भक्ति के चार गुण हैं, क्लेशाग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभ। और प्रेम भक्ति के 6 गुण हैं, जैसे बाकी के जो गुण हैं साधना और भाव भक्ति के, वो प्रेम भक्ति में अपने आप आ जाते हैं। और दूसरे दो गुण है जो भाव और साधना भक्ति में नहीं है, वो है संद्रानंदा विशेष आत्मा, एक अलग प्रकार का ही सुख। और छठा है कि कृष्ण को आकर्षित करना। तो यहां रूप गोस्वामी साधना भक्ति का वर्णन करते हैं, खास करके जो नवसकिया भक्त है, जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे थे, सनातन गोस्वामी को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो भक्ति के लक्षण है उनका वर्णन किया था। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति हमेशा जारी रहती है, भक्ति इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि भक्ति अचानक आपने कभी प्रारंभ कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने अपने पहले जन्म में भक्ति किया हो तो ही कोई भक्ति में आ सकता है। नेहा विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात्। अगर कुछ भक्ति की हो तो ही हम इस जन्म में भक्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते कि पूर्व जन्म का संबंध होना ही चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हुआ है और वो कर्मकांड के प्रति अनासक्त हो और भक्ति के जीवन में जो कार्य है उसको स्वीकार कर लेता है तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है। और प्रभुपाद जी निष्कर्ष निकालते हैं अगर किसे पिछले जन्म का भक्ति है या नहीं हो, अगर किसी के अंदर पिछले जन्म का भक्ति न होने पर भी अगर वो भक्तों के संपर्क में आ जाता है तो फिर वो साधना भक्ति करने के लिए योग्य विद्यार्थी बन जाएगा। शास्त्र कहता है कि भक्ति करने हेतु हमें पिछले जन्म का संग होना ही चाहिए। परंतु अगर ऐसा नहीं हो, जैसे प्रभुपाद जी भारत के बाहर चले गए और वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया, उनको कोई भक्ति का संबंध नहीं था, परंतु एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से वो साधना भक्ति करने के लिए योग्य बन गए। और प्रभुपाद जी निष्कर्ष निकालते हैं कि जो स्वाभाविक रूप से श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं उनको भक्ति बहुत आसान बन जाती है। अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से शास्त्र का अध्ययन करने का रुचि है, जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे, वो तो भंगिता, परंतु स्वाभाविक रूप से कभी कभी हम देखते भक्त होने पर भी कितने लोग भगवत गीता अभी तक पढ़े नहीं है कि नहीं, इधर भी हंस रहे लोग, यानी कि भक्त होने पर भी हमें भगवत गीता या शास्त्र अध्ययन करने की रुचि नहीं होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि नींद नहीं आने से मैं गीता पढ़ता हूं ताकि नींद आ जाए, क्योंकि कोई रुचि नहीं है। लेकिन जिसके अंदर स्वाभाविक रुचि हो, गौरांग प्रभु अभी यूरोप में थे, वो बता रहे थे एक उनको कोई ऐसे जवान विद्यार्थी मिल गए, उन्होंने सारा भागवत दो बार एक साल में पढ़ लिया। नेट पर जाते थे हर रोज दो दो घंटा बैठते थे और प्रभुपाद जी का जो किताब है वो नेट पर इंटरनेट पर पढ़ते थे। उन्होंने भागवत दो बार पढ़ लिया, गीता एक बार पढ़ लिया और सब कुछ जानते हैं। स्वाभाविक आकर्षण शास्त्र के प्रति जागृत हो गई, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं जिनके अंदर स्वाभाविक आकर्षण हो इन शास्त्रों को अध्ययन करने हेतु जानने हेतु, उनको साधना भक्ति बहुत आसान बन जाती है, जैसे कि दूसरे लोगों के तुलना पर। और इसलिए प्रभुपाद जी साधना भक्ति का अलग अलग विश्लेषण देते हैं। यहां चैतन्य चरितामृत में जो साधना भक्ति की प्रक्रिया उसको अभिभूय भी कहा गया है, उसको उपाय भी कहा गया है दशमूल में भक्ति विनोद ठाकुर के, और अभ्यास भी कहा गया है। साधना भक्ति यानी कि उपाय, उपाय किसके लिए उपाय कहते हैं, जिस उपाय के द्वारा उपाय की प्राप्ति हो, उपाय यानी कि उपाय से जो हेतु, उपाय से जो प्राप्ति होती है उसे उपाय कहा जाता है। और अभिजय यानी कि जो साधना भक्ति की प्रक्रिया है उसमें लगने से उस कार्य को अभिजय कहा जाता है। और अभ्यास, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, हम हमेशा देखते हैं लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर अभ्यास करने से क्या होगा, हम उस कार्य में निष्णात बन सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कई हमारे इंद्रिया वो ज्ञान अर्जन करने के लिए, सोचना विचार करना, और कई इंद्रिया जो हम सोचते ज्ञान अर्जन करते हैं उन कार्यों को पूर्णतया के लिए कई इंद्रिय लग जाते हैं, जो कर्मेंद्रिया। पहले ज्ञान के द्वारा इंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उस विषय को जानने के बाद वो अपने जीवन में उसको उपयोग करना, वो कैसे होगा, वो कर्मेंद्रियों के द्वारा। जब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय एक विशिष्ट प्रकार के कार्य में लग जाते हैं उसको कहा जाता है साधना। प्रैक्टिस यानी कि एक विशिष्ट कार्य को प्राप्त करने हेतु तो जब ज्ञान और कर्मेंद्रिय लग जाते हैं उसे कहा जाता है साधना। और साधना यानी कि प्रभुपाद जी लिखते हैं साधना भक्ति यानी कि ऐसा नहीं कि कोई कृत्रिम वस्तुओं को जागृत करना नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं आपने क्या नया चालू कर दिया, माला घुमा रहे हो अभी, तिलक लगाते हो, क्या नया चालू कर दिया, ये नया नहीं है, कृत्रिम नहीं है, ये हमारे में स्वाभाविक है। इसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर कोई छोटा सा बालक हो एक या दो साल का, वो चलने के लिए प्रयास करता है, वो अपने आप चल नहीं सकेगा अगर उसको चलने की पहले से स्वाभाविक रूप से वो शक्ति ना हो। जैसे जन्म लेता है तब उसके अंदर चलने की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप में वो छिपी रहती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने के बाद दो साल के बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे चलने का प्रयास करेगा, कभी कभी गिर जाएगा, लेकिन चलने की शक्ति होने के कारण वो प्रयास को, वो प्रयास क्या करेगा, वो चलने की जो शक्ति है जागृत कर देगी। अगर कोई जिसके पैर नहीं हो उसको अब कितना ही प्रयास करो चलाने में, उसको खड़ा कर दो वो फिर से गिर जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रयास करने से जो आपके पास नहीं हो वो कभी प्राप्त नहीं होगा, ये जानना चाहिए। भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनको किसी ने पूछा था आप इतने महान कैसे बन गए, वो कहने लगा प्रैक्टिस करने से। परंतु उसने अपने बच्चों को भी बहुत प्रैक्टिस कराया लेकिन उससे वो इतना सफल खिलाड़ी नहीं बन पाया। तो कहने का उद्देश्य है प्रैक्टिस से अगर आपके अंदर न हो उसके अंदर आप निष्णात नहीं बन पाओगे। जैसे कोई चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता हो, मूर्तिकार के अंदर वो गुण पहले से ही है, वो पहले से होने के कारण जब वो प्रैक्टिस कर लेता है जो पहले से रहने वाला जो छिपा हुआ है वो जागृत हो जाएगा। जैसे एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे यूरोप देश में, उनका नाम था माइकल एंजेलो। तो उनको किसी ने पूछा था आप मूर्ति कैसे बनाते हो, वो कहने लगा नहीं मैं मूर्ति नहीं बनाता हूं, मूर्ति पहले से ही है, मैं केवल जो एक्स्ट्रा मार्बल है उसको निकाल देता हूं। हम लोग हाल ही में जयपुर गए थे निगड़ी के मंदिर के लिए श्री विग्रह का ऑर्डर देने के लिए। काले भगवान रहेंगे तो वहां के जो मूर्तिकार वो कह रहे थे देखो जो मूर्तिकार होते हैं वो प्रैक्टिस से मूर्तिकार नहीं बनते। जैसे यहां टर्नर बन सकते हो, फिटर बन सकते हो, उसमें भी कई लोगों का स्वाभाविक गुणधर्म होता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर हाथ में मिल गया तो घुमाकर अलग अलग चीज करते हैं। तो वैसे वो कह रहे थे कि जो मूर्तिकार होते हैं कई लोग उनके अंदर वो नेचुरल भगवान का देन होता है। जैसे हाथ में उनका वो छिन्नी आ गई तो मारते ही मूर्ति बनने लगती है। और कई लोग प्रैक्टिस करने से भी प्राप्त नहीं होता। तो वैसे प्रभुपाद जी लिखते भक्ति ये स्वाभाविक है, ये कोई फॉरेन नहीं है, ये बाहर का कोई कृत्रिम नहीं है, नया फैशन नहीं है। कृति साध्य भवेत साध्य भावसा साधना विदा, ये पहले से भाव है वो क्या होगा, वो जागृत हो जाएगा जब हम उसको करने लगेंगे। इसलिए इसको कोई फॉरेन नहीं समझना चाहिए, बाहर का नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते, हम देखते जो असभ्य जो अनसिविलाइज्ड जो आदिवासी लोग हैं हम उनको देखते हैं वो तो कोई वैदिक धर्म का पालन नहीं करते हैं, कोई वैदिक शास्त्र का पालन नहीं करते, परंतु उनके अंदर भी भगवान की पूजा करने की वृत्ति है। हम कैसे देखते हैं उसको, अगर वो बड़े बड़े बादलों को देखते हैं, अगर आकाश में चमकने लगता है तो वो प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को जाकर वो अपना सिर लगाते हैं, या बड़े बड़े नदियों को देखकर उसको प्रणाम करते हैं। यानी कि किसी ऐसे बड़े चीजों को देखकर उसके प्रति गौरव रहना वो क्या दिखाता है कि उनके अंदर भी भगवान के प्रति सेवा करने का गुण है, परंतु अभी जागृत नहीं हो गया। क्यों जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ है जहां उनको ऐसी सभ्यता नहीं है, ऐसी संस्कृति नहीं है। हम देखते हैं भक्ति इतनी डीप है हर एक जीव में, इसको हम खास करके भारत में लोग भूलते नहीं है। जैसे पंडरी मतलब विट्ठल का स्थान है, तो पंडरी शब्द का लोग उपयोग करते क्रिकेट की पंडरी, यानी कि पंडरपुर आना ही चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, भगवान की पूजा करना। जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी नट या नटियों का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने की जो वृत्ति है उस स्वाभाविक होने के कारण उसको जो जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसे साधना भक्ति कहा जाता है। और एक बार जो हमारे अंदर जो स्वाभाविक भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो साधना भक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को जब श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे वो कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना श्रवणादि शुद्ध चित्त करियो उदय, कि भक्ति भगवान के प्रति वो हमेशा के लिए, लेकिन उसको जागृत करना है। धीरे धीरे जागृत करने से जैसे लकड़ी में पहले से अग्नि है, अगर अग्नि नहीं होता तो जलाने से जलता नहीं, तो अग्नि पहले से है। उसको जब हम ऐसे वातावरण में लाते हैं तो तुरंत अग्नि भड़क उठती है। वैसे साधना भक्ति ने कि हमारे सारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को जब ऐसे कार्य में लगाते हैं जिससे कि भक्ति प्रकट हो जाती है। और यहां रूप गोस्वामी कहते हैं साधना भक्ति के स्वाभाविक गुण धर्म, जब उस स्वाभाविक गुण धर्म में हम भाग नहीं लेंगे, स्वाभाविक गुण धर्म क्या है, श्रवण और कीर्तन, ये साधना भक्ति का स्वाभाविक गुण धर्म है। और जैसे हम साधना भक्ति में लग जाते हैं और हरि कीर्तन करने लगते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, ये साधना भक्ति का मुख्य गुण धर्म है। जो कोई कहता है कि मैं कितने साल से भक्ति कर रहा हूं लेकिन इस दो कार्य को अगर नहीं करेगा, श्रवण और कीर्तन नहीं करेगा, तो कभी भक्ति प्रकट नहीं होगी। वो दूसरों को ये नहीं कह सकता कि अरे मैं कितने साल से कर रहा हूं भक्ति क्यों नहीं प्रकट हो रही है। नहीं, अगर आप साधना भक्ति का मेन गुणधर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो उससे भक्ति जागृत नहीं होगी। ये मुख्य धर्म है क्या, श्रवण और कीर्तन। और जब हम श्रवण और कीर्तन करने लगेंगे तो साधना भक्ति का जो तटस्थ गुणधर्म है वो क्या है, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। अगर इन चीजों को बिना करते हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करने का प्रयास करेंगे तो क्या है, वो जो कच्चा आम है उसको पत्थर के ऊपर मार मार के उसको नरम बनाने का प्रयास है। आम तो नरम होना चाहिए, पीला होना चाहिए, लेकिन अगर कच्चा आम लेकर उसको स्वाभाविक रूप से हम पकने नहीं देंगे तो क्या होगा, कृत्रिम रूप से उसके ऊपर पत्थर मार मार कर उसको नरम बनाएंगे तो आम वो कोई मीठा नहीं बनेगा, वो खट्टा ही रहेगा। वैसे ही अगर जबरदस्ती से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो सहजीय लोग करते हैं, सहजीय यानी कि जो श्रवण कीर्तन में भाग न लेकर वो कच्चा आम को मारने के समान अपने आप को, वो कभी मोरपीस लगाते हैं, कभी सखियों का वेश धारण करते हैं, कभी स्वयं मोर बन जाते हैं, और कभी सोचने लगते कि मैं गोपी हूं, मैं गोप हूं, मैं भगवान का सखा हूं, ऐसे करके अपने हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता बल्कि भौतिक काम जागृत हो जाता है। इसलिए साधना भक्ति का मेन प्रक्रिया क्या है, श्रवण कीर्तन, वो साधना भक्ति का गुणधर्म है। और जब हम इन दो चीजों को करते हैं तो क्या होगा, हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और साधना भक्ति के लिए इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना महत्व दिया था, कभी कभी लोगों को लगता है साधना भक्ति केवल ब्रह्मचर्य के लिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि साधना भक्ति केवल ब्रह्मचर्यों के लिए नहीं है, जो अपने आप को भक्त कहलाता है उसको साधना करनी चाहिए। जो साधना भक्त ब्रह्मचारी ही केवल शेड्यूल पालन नहीं करना है, जो बाहर रहने वाले उनको भी साधना भक्ति करनी है, उनको भी शेड्यूल पालन करना चाहिए। खाना 1 बजे ही खाते, कई ऐसे लोग हैं वो कहेंगे 1 बजने से ही मुझे मेरे पेट के अंदर जो अग्नि है जलने लगती है, लेकिन साधना भक्ति के लिए अग्नि अगर नहीं जल रही है तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी खास लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंह में, साधना भक्ति इज नॉट ओनली मेंट फॉर ब्रह्मचारी, साधना भक्ति सबके लिए है। तो ऐसा नियम पालन करना, ऐसे नहीं कि गृहस्थों को अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हो तो केवल यात्रा में सेवन करेंगे, नहीं, उन्हें भी हर रोज श्रवण करना होगा, हर रोज सोलह माला जप करना होगा। और कोई कहता है कि जप करना सबसे महत्वपूर्ण है तो केवल जप ही करते रहेंगे, नहीं, जप से महत्वपूर्ण है श्रवण करना। केवल श्रवण करने से ही जप करने के लिए इच्छा प्राप्त हो जाएगी, अगर श्रवण नहीं करेंगे तो जप करने की जो इच्छा है वो नाश हो जाती है। इसलिए हर रोज श्रवण करना चाहिए। अगर मंदिर में नहीं आ सकेंगे तो कम से कम अपने घर में श्रवण करने के लिए ऐसे योजना बनानी चाहिए। श्रवण और कीर्तन दोनों साथ में हर रोज चलना चाहिए, तब, क्योंकि साधना भक्ति का गुण धर्म है, तब दूसरा चीज जागृत हो जाएगा। जिसमें श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में अपने सारे किताबों को प्रकाशित करने के लिए एक प्रेस बनाया था, और उस प्रेस में कई गृहस्थ भक्त काम करते थे, कई ब्रह्मचारी भी काम करते थे। प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके गृहस्थ भक्त थे वो मंदिर के कार्यकलाप में भाग नहीं लेते थे, जप के लिए नहीं आते थे और मंगल आरती नहीं आते थे। तो प्रभुपाद जी ने जयदेव महाराज को बोला, देखो इसको कहो अगर ये मंदिर में प्रातकालीन कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तो उनको कह देना प्रेस बंद करना है। यानी कि वो प्रभुपाद जी का एक महत्वपूर्ण सेवा था, क्योंकि उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा दी थी कि आप अगर आपके पास पैसा हो तो क्या करो, पुस्तक का वितरण करो, पुस्तक आप प्रकाशित करो। तो भक्त जयदेव महाराज कह रहे थे कि ये भक्त बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे थे लेकिन सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें भाग नहीं ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जयदेव महाराज को भेजा, उसको जाकर कहो, और जाकर जयदेव महाराज ने कह दे कि देखो आपको साधना भक्ति में भाग लेना चाहिए, अगर नहीं कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस बंद करना है। फिर वो तीन चार दिन के लिए आया, फिर से बंद कर दिया ना। तो प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी कि इस प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दो। प्रभुपाद जी कहना चाहते थे कि साधना भक्ति इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप नहीं करोगे तो बाकी सेवा वो भक्ति नहीं होकर वो साधारण बन जाएगा। जिस समय जुहू में मंदिर नहीं था, भक्तगण आकाश गंगा में रहते थे और मॉर्निंग प्रोग्राम करना बंद कर दिया था भक्तों ने। प्रभुपाद जी ने कहा फिर से हिप्पी बन जाओगे, अगर साधना नहीं करोगे तो फिर से हिप्पी बन जाओगे। इसलिए साधना भक्ति का वो अंग है, जैसे मिठास में अगर कोई मीठा पदार्थ है उसको मीठा श्रीखंड कहते, अगर श्रीखंड में मीठा नहीं हो तो श्रीखंड नहीं है। वैसे ही साधना भक्ति में श्रवण कीर्तन न हो फिर वो साधना भक्ति नहीं है, वो साधारण कार्य है। जब श्रवण कीर्तन करेंगे तब हम भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं और कभी कभी लगता है मैं प्रगति नहीं कर रहा हूं। जैसे कि एक बार एक क्रिश्चियन साधु थे, उनके पास एक उनका विद्यार्थी चला गया, उन्होंने वो कहने लगा देखो मैं आपसे कितने साल से सुन रहा हूं लेकिन अभी तक भगवान के प्रति लव ऑफ गॉड जागृत नहीं हुआ है, तो आपके बोलने में कुछ गलती हो सकती है या मेरे सुनने में कोई गलती हो सकती है। तो जो क्रिश्चियन प्रचारक थे उन्होंने कहा जाओ उधर से बास्केट उठाओ और उसमें से पानी लेकर आओ। तो फिर वो गया एक बार पानी लेकर आया कुएं से, लेकिन देखा जैसे पानी लेकर आ रहा था क्योंकि बास्केट में बहुत सारे छिद्र थे, छिद्र होने के कारण सारा पानी बाहर निकल जाता था। तो उन्होंने कहा ये तो बास्केट में बहुत सारे छिद्र है, ऐसे क्या फायदा लेकर। पादरी कहने लगे नहीं लेकर आओ, बार बार करते रहो। ऐसे उन्होंने 10 बार उनसे कराया कि वो जाते थे कुएं से पानी उठाते थे और जब लेकर आते पादरी के पास पानी सब वहां से निकल जाता, कुछ भी पानी नहीं बचता। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा है कि इसमें तो पानी नहीं रहता है, तो फायदा क्या पानी लेने से। तो कहने लगे माय डियर फ्रेंड कि मेरे मित्र देखो ये बास्केट में बहुत सारा छिद्र है और इसलिए पानी इसमें रहता नहीं, सब बह जाता है। परंतु पानी न रहने पर भी बास्केट पहले बहुत गंदा था क्योंकि अब बार बार कुएं में इस बास्केट को डालते तो क्या हो गया, अभी बास्केट साफ हो गया है। अभी आगे कार्य क्या करना है कि वो छिद्र को बंद कर देना है ताकि बास्केट में पानी रहेगा। वैसे हमारी गति है साधना भक्ति में लगने से, क्योंकि अनर्थों के बहुत सारे छिद्र है। वो अनर्थों के छिद्र क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन जो हमने सुना है वो सब बहा देता है, वो चला जाता है। परंतु बार बार सुनने से क्या होगा, कम से कम जो बास्केट है हमारे हृदय का जो बास्केट है वो साफ हो जाएगा। जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है, मेल न्यूट्रिशन हो गया, उसके अंदर वीकनेस आ गया, ऐसा पतला हो गया, अगर वो कुछ खाता है क्योंकि पतला होने के कारण उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अगर खाएगा नहीं तो फिर से ज्यादा जीर्ण होता रहेगा, तो फिर उपाय क्या है उसके लिए। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है घी खाते रहो। तो घी खाने से क्या होगा, धीरे धीरे घी खाने से ये तो निश्चित है कि वो खाने से क्योंकि जीर्ण करने की शक्ति न हो तो अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण होने से डिसेंट्री हो जाएगा, तो जो खाया वो सब निकल जाएगा। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसी एक प्रक्रिया है कि घी खाने से कम कुछ ना कुछ पेट पे लग जाएगा। 1 किलो घी खाओ तो 10 ग्राम आपके शरीर में रह जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होगा, अगर घी खाने की प्रक्रिया को आप चालू रखो तो धीरे धीरे आप शक्ति को प्राप्त करने में सफल बन जाओगे। वैसे साधना भक्ति है, अगर 1 घंटा अगर हम साधना भक्ति करेंगे तो 30 सेकंड बच जाएगा, इतना ही हम जान सकेंगे, उतना ही प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन 1 घंटा करते 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 वो जो 30 सेकंड रहता जाएगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी साधना भक्ति के प्रति इतना जोर देते थे कि साधना भक्ति करो। एक बार उनके एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी को खत लिखा तो कहने लगे देखो श्री प्रभुपाद जी, माया मुझे इतनी सता रही है, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कई ग्रहों का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। उन्होंने ऐसे प्रभुपाद जी को लिखा। प्रभुपाद जी कहने लगे जस्ट चैंट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। अब हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, 4 नियम का पालन करो और सारे ग्रहों को मैं लात मार के भगा दूंगा। यानी कि अगर गुरु के प्रति विश्वास हो और साधना भक्ति में लग जाते हैं तो कितनी माया शक्तिशाली क्यों ना हो वो हमें स्पर्श नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही साधना भक्ति में तीव्रता कम हो जाती है तो माया बहुत नजदीक आने लगती है। तो इसलिए रूप गोस्वामी आगे कहते सारे साधकों को कि साधना भक्ति की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। तो 7वें स्कंद से नारद मुनि का उल्लेख करते हैं। जिस समय नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे वो कहते कि तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयत्। किसी न किसी प्रकार से हमारा जो मन है वो भगवान के प्रति निवेश होना चाहिए, कैसे ना कैसे करके। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में जो किसी न किसी प्रकार से भगवान के प्रति मन आकर्षण होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे योजनाएं बनाई है रेवोल्यूशनरी। पहले हम देखते थे जो पहले जमाने में भगवान का अगर चित्र हो, पहले किसी के पास फोटोग्राफी नहीं था
अगर कोई बड़े धनिक परिवार के हो, वही लोग कोई पेंटिंग करते थे, केवल लोग मंदिर में आकर भगवान की पूजा करते थे, घर में कोई मंदिर नहीं रहता था, फोटो भी नहीं होते थे, केवल अगर भगवान के विग्रह हो तो विग्रह रहा करते थे। क्यों ऐसा था? एक तो कहेंगे नहीं नहीं तब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, वैसी बात नहीं है, वहां तो अष्ट सिद्धियां थी, वो सब प्राप्त करके उसके द्वारा कुछ भी वो बना सकते थे, लेकिन भगवान का चिंतन वो स्वाभाविक था उस समय, जो कुछ भी आप देखो भगवान का याद दिलाता था। लेकिन आज भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, बहुत कम जगह जहां भगवान का याद दिलाता है, भगवान के मंदिर में भी आकर और कुछ याद दिलाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया कि किसी न किसी प्रकार से कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, तो लोग टी शर्ट पहनते आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, यानी कि उधर याद करो, आप कपड़ा पहन रहे हो ऐसा शास्त्र के अनुसार ये तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो कृष्ण का आपको याद दिलाता है तो कोई बात नहीं है। घर के हर एक जगह पे हमने देखा है, कई भक्तों के टॉयलेट में भी है नेवर फॉरगेट कृष्ण, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का चिंतन करना। ये जो छोटे छोटे भी टेप रिकॉर्ड रहा है, 24 घंटा प्रभुपाद जी गाते रहे थे, आपका गाना बंद हो जाए फिर भी वो आपको याद कराएंगे। तो यहां रूप गोस्वामी इसी सिद्धांत को कहते कि तस्मात किसी न किसी प्रकार से आपको सामग्री चाहिए उसका उपयोग करना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से सम और अगर किसी न किसी प्रकार से भगवान का चिंतन होना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये आचार्यों का कर्तव्य है, गुरुओं का कर्तव्य है किसी न किसी प्रकार से अपने शिष्यों को जबरदस्ती करना, जैसे कि वो कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, कृष्ण का याद करते रहेंगे। जैसे अगर डराकर मृत्यु आने वाली है, कृष्णानंद डराते रहते सबको कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, भगवान का चिंतन करो, तो उस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते और प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल मार्ग दिया है जैसे कि हम कृष्ण का हमेशा चिंतन कर सकते हैं। वो क्या मार्ग है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करने से क्या होगा कि सतत कीर्तन करने से हम कृष्ण का याद कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पहले खास करके हिंदू समाज में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान से संबंधित रखते थे, नारायण दास वामन दास ऐसे अलग अलग नाम रखते थे। इससे क्या होता था, अगर गुस्से से अगर मां बुलाती थी नारायण इधर आओ तो शुद्ध बन जाती थी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का नाम ले रही है। इसलिए एक श्री संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि आप क्यों अपने बच्चों को नाम रखते हो नंबी और तंबी, उसे क्या मिलेगा? ऐसे नाम रखने से वो कहते कि ऐसा नाम रखना लोगों को लगता है कि देखो मेरा बेटा जो है बहुत फ्रेश है, ताजा है, लेकिन कितने साल तक वो ताजा रहेगा? धीरे धीरे उसको अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे, फिर बूढ़ा बन जाएगा, शरीर जर्जरित हो जाएगा, फिर वो सड़ जाएगा, फिर वो मर जाएगा। तो इसमें केवल नाम रखते हुए कि मेरा बेटा ताजा है वो कितने साल तक चलेगा? इसलिए क्यों ना अपने बच्चों को नाम कृष्णदास रामदास रखते हो, क्योंकि कृष्ण और रामदास रखने से क्या होगा? वो कहते हैं जो जिसका नाम कृष्णदास और रामदास है और कृष्ण की मां को कभी नरक की गति होगी, जिसने भी अपने बच्चों को कृष्णदास और रामदास रखा है और ऐसी माता जो कृष्णदास और रामदास की माता है वो कभी नरक को प्राप्त नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए अपने बच्चों का चिंतन करते रहती है। अजामिल एक सुंदर उदाहरण है, लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। हम कहां गए थे, जयपुर गए थे, उस समय किसी के घर में गए थे, उनके बेटी का नाम था गोल्डी, गोल्डी डॉगी कैटी, तो कोई नाम है। तो जैसे नाम रखो, अगर ऐसे कुत्तों बिल्लियों को नाम रखोगे तो फिर उनका चिंतन करते करते वही बनना पड़ेगा, आपके बच्चे भी वही बनेंगे और आप भी वही बनोगे। एक कृष्ण चिंतन नहीं है। तो इसलिए यहां रूप गोस्वामी ये वैदिक भंडार, जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक संस्कृति है, वो क्या करते है, किसी न किसी प्रकार से हमें मदद करते है। भगवान का चिंतन होना चाहिए। इसलिए घर में आजकल हम देखते हैं, जो कॉलोनी होता है उसको केवल सेक्टर नाम होता है, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, यानी कि लोग क्या बनते जा रहे हैं, इंपर्सनलिस्ट बनते जा रहे हैं, या भगवान का चिंतन नहीं होगा। लेकिन पहले घरों को भी नाम देते थे, मधुबन, वृंदावन, ऐसे जो पंच तत्व से बना हुआ जो घर है, जो जीवित नहीं है, लेकिन अपने घरों को भी भगवान का नाम देकर वो कृष्ण का याद करते थे। जैसे हम जहां हम रहते थे बलगम में, वहां हर एक गली रामदेव गली, यानी कि भगवान का याद आ गया। अनंत शयन गली, वहां भगवान का याद आ गया। लेकिन धीरे धीरे फिर बदलने लगा, गांधी रोड, अंबेडकर रोड, तिलक रोड, ये हमेशा रहता है सब जगह में, जहां भी चले जाओ। जैसे हम पुस्तक वितरण करने के लिए जाते थे, अगर किसी नए शहर में चले जाओ उनको पूछने का महात्मा गांधी रोड कहां है, क्योंकि आप जानते हैं महात्मा गांधी रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता होगा, यहां पुस्तक वितरण करने के लिए बहुत अच्छे से पुस्तक जा सकते हैं। हाँ, हमारे भक्त ऐसे ही करते थे कि महात्मा गांधी रोड का है और अंबेडकर चौक क्या है, तो वहां जाकर आप अपना गाड़ी लगा सकते हो। लेकिन पहले हर एक गली भी भगवान के नाम से रहता था। ये क्या है, ये इसीलिए है क्योंकि एन केन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, किसी न किसी प्रकार से मन कृष्ण में स्थित होना चाहिए। इसलिए नारद मुनि कहते युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर जैसे कि गोप्या कामाद, गोपीगण भगवान के, भगवान का चिंतन करते थे, क्यों, क्योंकि काम के कारण। गोप्या कामाद भयात कमसो, कम सितना भयभीत था कृष्ण का, जब पानी भी पीता था वह पानी के अंदर कृष्ण का प्रतिबिंब देखता था, आईने में वो कृष्ण को देखता था, हर जगह में वो कृष्ण को देखता था। तो नारद मुनि कहते कि देखो, कम से कम किसी न किसी प्रकार से वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है, और उसका परिणाम क्या हो गया, जितने सारे राक्षस मारे गए भगवान के द्वारा, कई लोगों को सहुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई, कई लोग सारित्य मुक्ति प्राप्त कर लिए। जो पौंड्रक वासुदेव था वो तो राक्षस था, लेकिन अपने आप को कृष्ण का रूप धारण करने के कारण क्या हो गया, उसको सारित्य मुक्ति प्राप्त हो गई। हम इसलिए देखते, पहले जो गांव में भिखारी आते थे भीख मांगने के लिए, आजकल के भिखारी, जैसे कल बंब में इतनी बारिश थी तो कई लोग भीख मांगने वाले अपने बच्चों कपड़े उतार कर ऐसे हिल रहे थे ताकि लोगों को अनुकंपा जागृत होनी चाहिए। जैसे एक बंब में भिखारी है, उसकी महीने का तनख्वाह कितना है, कितना कलेक्ट करता, 35,000 रुपए कलेक्ट करता हो। उसके दो बड़े बड़े फ्लैट है, 3 बेडरूम फ्लैट, एक आर्टिकल आया था, 35,000 रुपए वो कलेक्ट करता है। उसको किसी ने पूछा, आप नौकरी क्यों नहीं करते, बोले ये सबसे बड़ा अच्छा नौकरी है जिसमें मैं स्वतंत्र हूं, कोई मेरा बॉस नहीं है। तो पहले भिखारी भी हम देखते हैं, हमारे बचपन में कोई हनुमान का रूप धारण करके आता था, कोई शिवजी बन के आता था, कोई कृष्ण बन के आता था, यानी कि वैदिक संस्कृति ऐसी थी जो भिखारी भी है आपको कृष्ण का याद दिलाएगा। तो यहां जो पौंड्रक जैसे राजा थे वो भी अपने आप को कृष्ण का रूप धारण करने से उन्होंने सारे अपने लोगों को कृष्ण का याद दिलाया। देश के कारण ऐसे रूप धारण किए थे, फिर भी उनको स्वरूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। फिर बाद में द्वेषा चैद्यो दया नृपा, शिशुपाल जैसे राजा है वो भगवान के प्रति इतना द्वेष रखते थे, ऐसे शिशुपाल भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। और संबंध वृष्णयो, और जो वृष्णी परिवार के लोग यादव है वो कैसे भगवान का हमेशा चिंतन करते थे, क्योंकि पारिवारिक नाता होने के कारण। जैसे आजकल भी कई यादव लोग कहते हैं हम कृष्ण के परिवार के, लेकिन कृष्ण ने अपने सारे परिवार को भगवान के धाम में भेज दिया था, कोई परिवार के नहीं रहे। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से एक पंजाब के एक सरदार मिले थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से लाइफ मेंबर बन गए। इस्कॉन के लाइफ मेंबर बनने के बाद प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे आपसे कोई प्राइवेट में बात कर रहा है। वो अपने निजक कमरे में लेकर कहने लगे, मुझे हमेशा यही डर लगता है कि मैं महाभारत के युद्ध में भगवान के विरुद्ध युद्ध किया था, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपके विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध और अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भी वहां युद्ध किया था भगवान के पक्ष में या भगवान के विरुद्ध, सब भगवान के धाम में चले गए, अभी जो है वो सब बद्ध जीव है, उसकी चिंता मत करो, आपको कोई डरने की नहीं जरूरी है, आपने न तो भगवान के साथ युद्ध किया है न तो उनके विरुद्ध, इसलिए हरिनाम जप करते रहो तो आप भगवान के धाम में चले जाओगे। कोई उस समय था उसे भगवान के धाम में चले गए। और स्नेहा द्वियम, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं आप सब स्नेह के कारण, अगर आप भगवान को अपना मित्र समझ लेते हो उससे भी आप हमेशा भगवान का चिंतन कर सकते हो। और नारद जी कहते हैं हम जैसे लोग अयम वयम विभो, हम भक्ता वयम विभो, हम केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। केवल वेन जैसे लोग, जो वेन थे उन्होंने कभी भगवान के प्रति द्वेष नहीं दिखाया, भगवान को पूर्णतया भूल गए थे, उनका द्वेष था, तो केवल वेन जैसे लोग नरक की प्राप्ति कर लिए। और कलयुग में वेन जैसे लोग बहुत ही है, वो पूर्णतया भगवान का जो चिंतन है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में लोगों को देना नहीं चाहते हैं, तो भगवान को दूर रखने का प्रयास करते हैं। नहीं तो किसी न किसी प्रकार से अगर कोई भगवान का चिंतन करता हो, जैसे रशिया में एक चोर किसी घर में घुस गया और उसने उठाया भगवद गीता, यानी कि कभी कभी भक्त लोग जो पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं बहुत लिबरल होते हैं, तो कहते हर एक चीज के प्रति ज्यादा आपको देखभाल करना चाहिए, अगरबत्ती हो, कैसेट हो, सीडी हो, लेकिन किताब ठीक है, अगर कोई चोरी भी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि भगवान का किताब चोरी कर रहा है और पढ़ेगा, और पढ़ने से कम एक बार तो हरि नाम जप करेगा। तो ऐसे चोरी करने पर भी चोरी कर रहा है वो गलत है, लेकिन कृष्ण की वस्तु चोरी करने के कारण उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये शास्त्र में गोवर्धन चोर का कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो भागवत कथा सुन रहा था और उसने सुन लिया कि कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, वो ग्वाल के साथ अपने मित्रों के साथ गया चराते हैं और उसका शरीर इतना सारा आभूषण है, तो चलने लगा उनको चोरी करने, वृंदावन आ गया और वो चोरी करने के लिए तैयार हो गया, और भगवान धीरे धीरे निकाल के दे रहे उसको, बोले तुम हाथ मत लगाओ क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत कठिन है, मैं खुद निकाल कर देता हूं। धीरे धीरे निकाल रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो क्योंकि कृष्ण के नजदीक आने के कारण उसके अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति पूर्ण गया, नाश हो गई। अंत में कहा सबसे बड़ा चोर तुम है, क्यों तुमने मेरा हृदय को चुरा लिया, जो चोरी करने के लिए आया था लेकिन श्री कृष्ण ने उसका हृदय चोरी कर लिया। तो इसे यहां हम देखते, रूप गोस्वामी कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण का चिंतन करता हो तो क्या होगा कि भगवान को प्राप्त कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी इतना सुंदरता से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इस सिद्धांत का उपयोग किया, एक पाश्चात्य देश के भक्त कह रहे थे, अगर प्रभुपाद जी के अलावा और कोई आता और हमें वो कहता कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, हम नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद जी ने देखा कि हमारा हम किस स्तर पर है और उस स्तर पर देखकर प्रभुपाद जी ने हमें सेवा में लगाया। यही भक्त कह रहे थे जैसे भारतीय लोगों में और पाश्चात्य लोगों में अंतर क्या है कि भारतीय लोग अगर एक जगह में खड़े हो जाएंगे, जैसे उदाहरण दे रहे थे सिक्योरिटी गार्ड का, कि भारत में सिक्योरिटी गार्ड एक जगह पर 8 घंटे के लिए उसी जगह पर आराम से बैठ सकता है बिना कुछ करते हुए, लेकिन वहां कि इतने चंचल होने के कारण, रजोगुण का प्रभाव इतना जोर होने के कारण, वो कह रहे थे अगर सिक्योरिटी गार्ड भी हो वो घूमता रहेगा आगे पीछे, वो बैठे नहीं रहेगा, वो कुछ कार्य करता रहेगा। वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने ऐसे बंदरों को जो इतने चंचल थे, ऐसे बंदर की जो जो उनकी जो प्रक्रिया है वो कृष्ण की सेवा में लगा दी, क्योंकि वो इतने रसलेस थे, भौतिक दृष्टि से देखा जाए वो दुर्गुण था, लेकिन जब वो कृष्ण के संबंध में आ गए तो अपने इन चंचल गुणों को ऐसी सेवा में लगा दी उन्होंने, इतना सारा सेवा किया। ये सारे भक्तों का यही अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो लोग नहीं होते तो इतने पैमाने में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बढ़ता नहीं था। अगर केवल भारतीय लोगों के साथ में रहता था, वो केवल प्लान बनाते रहते थे, ये प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे, आगे नहीं बढ़ता था, तो पहले मंदिर बनाते थे बाद में प्लान करते थे, जैसे जैसे बनता गया बाद में उन्होंने चित्र देखा कि उधर ये है उधर वो है, तो ये अंतर है ना कि उनके दुर्गुणों को भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण के सेवा में लगाकर उनको कृष्ण का चिंतन किस प्रकार से होना चाहिए वो बता रहे थे। और आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधना भक्ति का 2 विभाग है, एक है वैधि भक्ति और दूसरा रागानुग भक्ति। वैधि भक्ति का अर्थ है कोई अनुरक्ति नहीं है, यानी कि भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। दूसरा स्वाभाविक अनुराग भी नहीं है, यानी कि भक्ति की प्रक्रिया में स्वाभाविक प्रेम नहीं है, केवल शास्त्र और गुरु कहते हैं, क्योंकि शास्त्र और गुरु को मानना चाहिए, उनके प्रति विश्वास रखना चाहिए, इसी कारण वो भक्ति के प्रक्रिया में लग जाते हैं। ये हो गया साधना भक्ति का 1 भाग जिसे वैधि भक्ति कहा जाता है। और रागानुग भक्ति यानी कि जो साधना भक्ति की प्रक्रिया है उसमें स्वाभाविक प्रेम है, उसको कहना नहीं पड़ता कि मंगल आरती के लिए आना है, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि अगर मंगल आरती नहीं आओगे खाना नहीं मिलेगा और 108 महामंत्र लिखना पड़ेगा। कभी केवल इन लिखने को दूर करने हेतु या खाना नहीं मिलेगा इसीलिए जो ब्रह्मचर्य रहते कभी कभी ये इंपेटस होता है मंगल आरती आने के लिए, अगर कोई जगाए नहीं तो क्या होगा सोते रहेंगे। जैसे हमारे मंदिर में भक्त थे, अभी नहीं है, ब्रह्मचारी थे 1 साल के लिए, उन्होंने 1 साल मंगल आरती अटेंड करने के बाद कहा मंगल आरती 10:30 बजे होनी चाहिए, ये सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठकर मंगल आरती आना इसमें कोई रुचि नहीं है, तो फिर वो मंदिर छोड़कर चले गए। तो यहां साधना भक्ति वैधि भक्ति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन डर के कारण वो जो कर रहा है उसको करने के लिए प्रयास करता है। 16 माला वो जब इसलिए करता है, किसी लिए करता है ताकि अगर मैं नहीं करूं उससे डर रहता है, नरक का डर रहता है। इसलिए यहां रूप गोस्वामी इस साधना भक्ति के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज उनका खुद का उदाहरण नहीं है लेकिन उस प्रसंग का उदाहरण देते हो, वो क्या है, जो कोई डरा हुआ है, किससे डरा हुआ है, मृत्यु से डरा हुआ है, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चता भयम्। जो मृत्यु से डरा हुआ है, मृत्यु से पार करने की इच्छा रखता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे साधना भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चार प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति है डर के कारण, दूसरी भक्ति है कुछ फल की प्राप्ति रखते हुए, फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भक्ति करना, तीसरा एक कर्तव्य बुद्धि से। ये सब तीन साधना भक्ति में आते हैं और चौथा है केवल प्रेम के कारण भगवान की सेवा करना। तो यहां रागानुग और भाव भक्ति का अंतर क्या है? भाव भक्ति के बारे में जान रहे थे, भाव यानी कि प्रेम का अंकुर। भाव भक्ति और रागानुग भक्ति में अंतर यही है, रागानुग भक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, परंतु जो कृष्ण भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें वो आसक्त बन जाता है, और भाव भक्ति होने की वो कृष्ण के प्रति उसका जो प्रेम है उसका जो अंकुर चालू हो गया, धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले वैदिक भक्ति होने की गुरु के मार्गदर्शन पर ही, क्योंकि शास्त्र कहता है क्योंकि हम सभ्य लोग हैं, सिविलाइज्ड है, वैदिक धर्म में जन्म लिए हुए हैं, तो इसके कारण इच्छा न होने पर भी हम भक्ति करते हैं। जैसे हम देखते हैं बॉम्बे में गणेश उत्सव के समय जो काफी महाराष्ट्रियन लोग वो रहते हैं अमेरिका में, कई लोग रहते हैं खास एक दिन के लिए आ जाते हैं, अमेरिका से आते हैं एक दिन के लिए और अपने पुराने घर में डेढ़ दिन का गणपति रखते हैं। आप उनको देख सकते हो बॉम्बे जब वो चौपाटी आते हैं गणपति विसर्जन करने के लिए, सारे सोफिस्टिकेटेड महाराष्ट्रियन लोग लेकिन हाथ में गणपति रखेंगे, एक दिन के लिए आएंगे अमेरिका से यूरोप से आकर, लेकिन तो करना चाहिए। इस अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं हमारे जो हम जो सुख भोग रहे हैं उस सुख में बाधा आ जाएगा। तो क्यों नहीं एक दिन के लिए गणपति लेकर आओ, फिर उनको भेज दो, उनको विदा कर दो, उनको समुद्र में भेज दो। लेकिन आते हैं क्यों? डर के कारण। तो साधना भक्ति में कि डर के किए हुआ भक्ति है, मृत्यु का भय हो, नरक का भय हो, या हमारे सुख में कोई बाधा नहीं आना चाहिए इसलिए किया हुआ भक्ति हो, या कर्तव्य के कारण ये मेरे पिता ने दिया हुआ है इसलिए करना चाहिए, इसलिए साधना भक्ति के प्रक्रिया में लग जाते हैं। लेकिन रागानुग भक्ति यानी कि जो प्रक्रिया के प्रति आसक्ति हो गई है, प्रभुपाद जी सिंपल उदाहरण देते कि रागानुग भक्ति यानी कि वो विग्रहों की प्रेम से सेवा करने की नेचुरल स्वाभाविक इच्छा है, प्रेम से भगवान की सेवा करने लगता है। जैसे हमारे एक रघुनाथ है आनंद वृंदावन प्रभु के पुत्र, उनको स्वाभाविक प्रेम है भगवान के विग्रहों की सेवा करना। कई भक्तगण खुद आरती के सामने केवल मंगल आरती और गुरु पूजा में खड़े रहते हैं भगवान के सामने, क्योंकि वो खड़ा रहना चाहिए, और राजभोग आरती में और दोपहर के वैखाली का भोग में अब कभी केवल पुजारी जो आरती कर रहा है उसके अलावा कोई नहीं रहता उधर भगवान के सामने। लेकिन ये छोटे से बालक कोई भी आरती क्यों ना हो वो पूरे आरती समाप्त होने तक खड़े रहेंगे। उसका खुद का राधा कृष्ण है, सीताराम लक्ष्मण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर नीता है और उनकी पूजा करते हैं, यानी कि स्वाभाविक टेस्ट है वो भगवान की पूजा करने में जागृत हो जाती है। हरि नाम करने में स्वाभाविक टेस्ट जागृत हो जाता है, मंगल आरती आने में स्वाभाविक टेस्ट जागृत हो जाता है, यानी कि भौतिक जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है साधना भक्ति की जो प्रक्रिया है उसके प्रति जब स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे रागानुग भक्ति कहा जाता है। और भाव भक्ति यानी कि कृष्ण के प्रति अगर वो साधना न करने पर भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, यही अंतर है रागानुग भक्ति और साधना भक्ति में। तो इसलिए रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते परीक्षित महाराज का कि परीक्षित महाराज तो महान भक्ति है, भगवान के शुद्ध भक्त, ऐसे नहीं कि क्योंकि मृत्यु के डर से वो आ गए थे। लेकिन ये जो प्रसंग है भागवत का, ये जो उल्लेख किया गया है
कि जो कोई मृत्यु से दूर रहना चाहता है उसको साधना भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते वैधि भक्ति नहीं कि नो रिफ्यूजल, आप नकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूंगा, नो क्वेश्चन, प्रश्न नहीं कर सकते। जब आपको कहा जाता है करना है, आपको करना चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क नहीं है, यह है वैधि भक्ति। आप प्रश्न नहीं कर सकते हो, आप किसी से तर्क नहीं कर सकते हो, और कोई आप नकार नहीं कर सकते। जैसे मिलिट्री डिसिप्लिन, जो मिलिट्री की जो साधना होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूंगा। जैसे साधना भक्ति में कई ऐसी प्रक्रिया है जो हम जानते नहीं है, इससे करने से क्या लाभ होगा, फिर भी करना चाहिए। अगर कोई कहेगा दो तीन फैन चालू है मंदिर में, एयर कंडीशन भी चालू है, फिर आप भगवान को मोर पंख लेकर हवा दे रहे हो, ठीक है। कोई कह सकता है ये कैसा रिचुअल है कि जोर से फैन चालू है। कभी कभी हम देखते हैं भक्तगण ठंडी के कारण फैन बंद करते हैं और पंख लगा रहे भगवान को। तो तर्क के द्वारा ये तो हम समझ नहीं सकेंगे कि कैसे है, परंतु ऐसे प्रक्रिया में बिना प्रश्न किए लगने से, क्योंकि कहा गया है तो उसे साधना भक्ति कहा जाता है, और धीरे धीरे उसे प्रगति कर सकते। जैसे कि मिलिट्री में, जैसे अमेरिकन का मरीन फोर्स है, इस मरीन फोर्स में वो एक प्रकार का गन देते हैं और उनको कहते हैं कि ये गन नहीं है, रिवॉल्वर है, और उसको मानना पड़ता है, और कहते कि अब खड्डा खोदो, और उसको खड्डा खोदना पड़ता है, और उसको बोलते बंद कर दो। आपने क्यों खोदने के लिए लगा है? आप प्रश्न नहीं कर सकते, आपको खोदना है फिर बंद भी करना है, जैसे आपका बॉस कहेगा वैसे करना है, उसे कहते हैं साधना। तो ऐसे साधना भक्ति में लगने से हम धीरे धीरे उस प्रक्रिया के प्रति शास्त्र के द्वारा आकर्षण कर सकते हैं, तो रागानुगम भक्ति है। और आज शाम को हम चर्चा करेंगे कि इस प्रक्रिया में, जो साधना भक्ति के प्रक्रिया में क्या ऋग गोस्वामी ने रेकमेंड किया है, क्या हमें सलाह दी है, जिससे कि हम जो यहां तस्मात के नापी किसी न किसी प्रकार से भगवान का कैसा चिंतन कर सकते हो, हम शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।
स्वाभाविक अनुवाद नहीं होता और हम जो छात्र जो गुरु बताते थे करते, लेकिन इससे पहले हमने बताया कि हर एक जीव में कृष्ण प्रेम तो पहले से है, साधना करके उसको जगाना। तो फिर ये कैसे मतलब वैदिक पद्धति में भी छात्र और गुरु का ही मार्गदर्शन मिलता है, स्वाभाविक आकर्षण क्यों नहीं
होता? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क में रहने के कारण अनादि बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे। अगर भोग के प्रति लगने के कारण हमारा जो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम है वो लुप्त हो गया है। अभी हमारा भौतिक भोग करना सेकंड नेचर बन गया है। जैसे अगर कोई उदाहरण दिया जाता है, अगर शेर का बच्चा हो, अगर वो भेड़िया उनके साथ में रहेगा, ऐसे कहानी हम सुनते हो, तो उसके अंदर गुण है, वो हाथी को भी मार सकता है, लेकिन भेड़िया उनके साथ में रहने के कारण उसके अंदर क्या होता है कि भेड़ियों का गुण जागृत हो जाता है। लेकिन अगर किसी न किसी प्रकार से अगर वो शेर की गर्जना सुन लेता है तो अचानक कभी गर्जने लगता है। तो एक बार ऐसे भेड़ियों के साथ में एक शेर का बच्चा था, तो वैसे व्यवहार करता था, लेकिन एक बार सामने से दूसरा शेर आ गया तो शेर गर्जना करते ही भेड़ी भागने लगी, लेकिन ये शेर था तो स्वाभाविक हो गया उसको भी गर्जना करना। तो भेड़ी कहने लगे ये तो क्या कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही क्योंकि हम भौतिक संपर्क में रहने के कारण अभी क्या हो गया है, हम कृष्ण को भूल गए। और अगर कोई कहता है कि कृष्ण की सेवा करो तो तुरंत
वो ट्यूबलाइट होने के कारण जागृत नहीं होता, बहुत धीरे धीरे वो प्रकाशित होने लगता है। कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन जब हम वैधि भक्ति जबरदस्ती से भी करने लगते हैं तो कृष्ण के साथ ऐसे संपर्क में आने से धीरे धीरे जागृत होने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का उदाहरण देते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि जिसको काबिल हो गया, जो गन्ने का जूस है वो मिठासी है, वो मिठाई है, लेकिन जिसको पीली रोग हो गई है तो गन्ने का जूस पीने से क्या होता है, वो कड़वा लगता है, वो पी नहीं सकता, वो कहेगा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उसको जबरदस्ती से पिलाने से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे उसका रोग दूर होने लगता है वो जो मिठास है वो मीठा है पहले से ही, ऐसा नहीं कि वो कड़वा है, वो पहले से ही मीठा है, लेकिन वो जिह्वा उसमें वो रुचि नाश होने के कारण वो कड़वा लगता है। वैसे हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, लेकिन रोगग्रस्त होने के कारण प्रभुपाद जी उदाहरण देते नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्म, कि इंद्रिय भोग में लगने के कारण जीव प्रमत्त हो गया, तो ऐसे प्रमत्त अवस्था में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना अपने आप स्वाभाविक नहीं है, साधा संभव नहीं है। जैसे कि अगर पागल हो गया है, पागल व्यक्ति को अगर कोई मनोवैज्ञानिक तज्ञ से संपर्क में आ जाता है, धीरे 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 उसको गाइडेंस देने लगता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसको पहले समझाता है कि तू पागल है, कि जो पागल है वो कभी नहीं लगता कि मैं पागल हूं, पागल को लगता है कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूं, पागल को लगता है कि मैं महात्मा गांधी हूं, पागल को लगता है कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, हर एक जो क्रिकेट खेलने वाले सब पागल ही है, क्योंकि सबको लगता है कि मुझे ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, तो डॉक्टर लोग उसको कहने लगते कि तुम अभी पागल है, तुम जवाहरलाल नेहरू नहीं है, तो तुम्हारे पागल पाना दूर करने के लिए आपको दवा लेना होगा। तो वैसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं साधना भक्ति के द्वारा जो आध्यात्मिक पागलपन, जो भौतिक पागलपन आ गया है गुरु के मार्गदर्शन में, वो धीरे धीरे नाश होकर हमारा जो मूल कृष्ण भावना है वो जागृत हो सकता है। वैधि भक्ति क्यों कड़वा लगता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम जागृत न होने के कारण, लेकिन जैसे ही कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो इंटेलेक्चुअल स्तर पर राघवानंद भक्ति, यानी कि हम जानते हैं कृष्ण से प्रेम करना है, और साधना भक्ति में एक रुचि जागृत हो जाती है, फिर अपने आप 4 बजे नींद खुल जाती है, अपने आप लोग नींद में भी, कभी कभी हम देखते हैं लोग, कभी भक्त है तो 2 बजे भी सो जाए तो मंगल आरती के लिए उठना तो उठ जाते हैं, 4-4:30 बजे नींद खुल जाती है, नींद खुलते आके सब ऐसे हवी रहते हैं, लेकिन अपने आप हाथ उनका टॉयलेट के ऊपर चला जाता है, अपने आप टॉयलेट के बाद भागने लगते है, केवल स्नान करने के बाद पूरा जागृत हो जाते हो, यानी कि हैबिट, जो हैबिट है वो करने से क्या होगा, वो हम उसी चीज को करते रहेंगे जो हमें करना चाहिए। तो इसलिए हमारे स्तर पर वैधि भक्ति, ये साधना भक्ति कड़वाई है, लेकिन जब हम जानते हैं धीरे धीरे से जागृत होने लगता है, फिर वैधि भक्ति को करने में रुचि आने लगती है। इसलिए साधना भक्ति ये करना, और सबसे महत्वपूर्ण श्रवण और कीर्तन, अगर श्रवण कीर्तन न हो तो फिर हम कितना ही बड़ा मंदिर क्यों न बनाए, वो देखते हुए होटल बन जाएगा, बहुत सारे मंदिर होटल में परिवर्तित किए गए हैं, परंतु अगर श्रवण कीर्तन करेंगे फिर होटल भी मंदिर बना सकते, होटल में बैठकर भक्तगण जैसे बाहर यात्रा के लिए जाते हैं, कभी कभी मंदिर नहीं होता तो लोग होटल में चले जाकर वहां भी कीर्तन करेंगे, वहां भी भजन करेंगे, तो ये निर्भर करता है कि हम कितना श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो कि हमारा कृष्ण प्रेम जागृत कर सके। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय।